ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री नारायण गुरु के आदर्श मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने श्री नारायण गुरु को देश और समाज की सेवा में लगे हुए लोगों के लिए प्रकाश की किरण बताया। नई दिल्ली में आज श्री मोदी देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्वों श्री नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक शताब्दी पहले शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और विकसित भारत की दिशा में देश की यात्रा को प्रेरणा दी।
आज समाज का हर वर्ग, हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं।
ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा ने लाखों लोगों को अस्थायी राहत दी है। कथित तौर पर युद्ध विराम स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे से प्रभावी हुआ था, जबकि ईरानी शहरों पर इसराइल के हमले इससे कुछ समय पहले ही रुक गए थे। हालांकि युद्ध विराम के बावजूद अनिश्चितता बनी हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक ईरान से 2,295 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि आज तड़के ईरान के मशहद से 292 भारतीय नागरिक विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचे। वायुसेना ने भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के नागरिकों को निकालने के लिए जॉर्डन और मिस्र से भी मिशन शुरू किए हैं। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने इसराइल से 165 भारतीय नागरिकों को निकाला। ये विमान आज सवेरे अम्मान से नई दिल्ली पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने इन लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों को निकालना है। इसराइल से 161 भारतीय नागरिकों का एक और दल भी आज नई दिल्ली पहुंचा। वे आज सुबह अम्मान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने उनका स्वागत किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती मार्गरिटा ने कहा कि केंद्र सरकार ईरान और इसराइल में भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है और दोनों देशों में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
We are very happy to receive the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv. They are coming straight from Jordan, and we are in constant contact with all the Indian nationals in Iran as well as in Israel, and we are committed to provide all the assistance, all the support to our Indian nationals.
भारत श्रीलंका जैसे मित्र देशों को भी उनके नागरिकों को निकालने में मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
इसराइल में 17 श्रीलंकाई लोगों ने मध्य पूर्व में बढ़ते हालात के मद्देनजर भारत सरकार की विशेष उड़ान से यात्रा करने के लिए पंजीकरण कराया है। इसराइल में श्रीलंका के राजदूत निमल भंडारा ने कहा कि ये समूह बुधवार को जॉर्डन के अम्मान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। भारत तेल अवीव से अम्मान और दिल्ली के लिए आगे की उड़ान के लिए निःशुल्क परिवहन प्रदान कर रहा है। हालांकि यात्रियों को कोलंबो की अपनी यात्रा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस प्रयास का स्वागत करते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजय तेहरत ने समय पर सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया और इसे दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों और स्थायी साझेदारी का प्रतिबिंब बताया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
रक्षा मंत्रालय ने सेना के आतंकवाद रोधी अभियानों में उसकी तैयारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत आपातकालीन खरीद तंत्र के माध्यम से 13 रक्षा सौदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण शासन के 3 प्रमुख स्तंभ हैं जो विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। डॉ जयशंकर ने आज 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर कहा कि देश में सार्वजनिक सेवा वितरण, विशेष रूप से पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विदेश मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा संस्करण देश भर में लागू किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।